शांति की ये मधुर ध्वनि ही है जो हमारे ब्राह्मण जीवन में, जब से हमारा ब्राह्मण जीवन शुरू होता है तब से लेकर अंत तक ये ही पाठ पढ़ाती है, जो कि पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। और पहले पाठ में तो हम सबको बताया जाता है कि हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं। और अंत में जब हमारी कर्मातीत अवस्था होती है तब उस स्वरूप में वास्तव में स्थित होते हैं, और फिर इस प्रकार से हमारी सदगति हो जाती है, अंतमति सोगति हो जाती है। तो जीवन के ये दोनों पहलू ही हैं, प्रारंभ और अंत। तो प्रारंभ तो हम सबका अलग अलग समय पर हुआ ही है, और जैसा बता रहे थे भाई साहब की आदि से लेकर जब से प्रारंभ हुआ है अलग अलग वर्षों से हम सब लोग ज्ञान में चल रहे हैं। और बाबा का भी जो साकार जीवन था ब्रह्मा बाबा का 1937 से 69 तक, उसके बाद ये अव्यक्त स्वरूप से जो बाबा हमारी पालना कर रहे हैं वह जीवन कहीं ज्यादा है अव्यक्ति पार्ट, क्योंकि उसमें शरीर का बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं। और भक्तों की मनोकामना हो, चाहे ब्राह्मणों की बात हो अथवा वैज्ञानिकों की, या किसी को भी बाबा को कुछ टच करना है, कार्य कराना है, वो बाबा करा रहे हैं। तो अभी बाबा ने हम सबको ये ही वरदान दिया हुआ है कि अंत समय के लिए अपने को हम तैयार करें, क्योंकि परिस्थितियां जितनी शीघ्रता से बदलती जा रही हैं विश्व की, उस हिसाब से हमारा परिवर्तन जो है और भी तीव्र गति से होना चाहिए, क्योंकि समय ने अगर परिवर्तन कराया तो समय नंबर वन हो जाएगा और बाबा ने कहा हम नंबर टू हो जाएंगे। इसलिए समय से पहले ही हम कैसे तैयार हों और अंत मते सो गति हो, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को जो पूरे ज्ञान का सार बताया है, ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन सार दो बातों का। पहली बात तो जैसा बताया भी जा रहा था मन के ऊपर, तो मन जीते जगत जीत कहा जाता है। वास्तव में बाबा ने बताया है कि मन के साथ माया जीते जगत जीत। तो एक बात तो ये है जिससे हमारी आत्मा का वो संपूर्ण स्वरूप प्रकट होता है, और फिर हम वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जब परम धाम से आई है तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र स्वरूप में थी, और जाना भी उसी स्वरूप में ही है, क्योंकि घर है। और इसीलिए परम धाम में जाने के लिए हमें बिल्कुल वैसा ही स्वरूप में आ जाना पड़े जिस स्वरूप में हमने घर छोड़ा था। और वैसा स्वरूप लाने के लिए हम पुरुषार्थ सब कर ही रहे हैं, बाबा भी हम बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा है। लेकिन एक विशेष बात जो बाबा ने खास बताई है वो ये है कि प्रकृति जीते भी जगत जीत, क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, जो भारतीय संस्कृति ने दिया है, वसुधा ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। उस नाते से तो सबसे पहले ये पांच तत्वों का बना शरीर प्रकृति जीत ही हमें बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा भी बने और बाबा ने भी ये वरदान जैसे जानकी दादी जी को भी दिया हुआ था। शायद मैं इस समय में रिफर करना चाहूंगा जानकी दादी जी का एक बात की, उनका तबीयत पिछला जो सेंचुरी थी यानी 1999 और दिसंबर की 31 तारीख वो लोटस में थी अहमदाबाद में, तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी और डॉक्टरों ने भी जैसे जवाब दे दिया था कि भाई जिसको बुलाना हो बुला लो और अब समय कम है इनके लिए। तो 31 तारीख को तो बाबा हमेशा आते ही हैं, तो यहाँ पर मधुबन में यही शांतिवन में बाबा आए हुए थे और बाबा को बताया निर्वैर भाई ने और दादी प्रकाशमणि जी ने कि बाबा दादी जानकी की तबीयत तो बहुत खराब है और अहमदाबाद में लोटस में है और डॉक्टरों ने बोला है कि भाई बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो बाबा ने बस देखा दादी की तरफ, भाई निर्वैर भाई साहब की तरफ और कहा कि नहीं बच्चे उसे कुछ नहीं होगा, वो प्रकृति जीत आत्मा है। तो प्रकृति जीत आत्मा आज से 20 साल से ज्यादा हो गए, 21वां साल चल रहा है। तो बस अगले दिन से ही दादी एकदम ठीक होने लगी और दो दिन बाद यहाँ आ गए और फिर कैसे 20 और सालों तक दादी ने कितनी सेवा करी, विश्व के कोने कोने में भी गए। तो हम सब भी मन जीते जगत जीत की बात तो जान गए हैं, क्योंकि मन को सुधारने की बात, मन को जीतने की बात, व्यर्थ संकल्पों की बात वो सब करते ही है, प्रतिदिन योग करते हैं। लेकिन प्रकृति जीत भी और कैसे बने, तो उसके लिए आज मैं कुछ बातें करना चाहूंगा, क्योंकि साकार बाबा का अंतिम स्वरूप हमें देखने का मौका मिला। वैसे तो ज्ञान में आए थे 62 में, लेकिन और कई बार बाबा से मिले हुए थे, लेकिन अंतिम दो दिन 17 जनवरी और 18 जनवरी को बाबा ने किस प्रकार हमें अपने पास बुला लिया। बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, तो बाबा ने अपने वचन के अनुसार जब वहां जा रहे थे तो बाबा ने कहा था बच्चे वहां जाओ, और क्योंकि हमारी बहुत इच्छा नहीं थी, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सेंटर नहीं था। 1967 की बात है जब इंजीनियरिंग पास करके हम आए और फर्स्ट पोस्टिंग हुई, और उधर बाबा ने भेजा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे बाबा इसीलिए भेज रहा है कि वहां पर बहुत बच्चे बाबा का जैसे इंतजार कर रहे हैं। खैर ड्रामा अनुसार जाना भी हुआ, और वहाँ बाबा को तो अपना कार्य कराना था, बहुत सेवा भी हुई और जैसे बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार का भी अपना बहुत महत्व है, आदि में हुआ है सो अंत में भी होगा, तो वहाँ पर भी इस रीति से सेवा भी बहुत हुई और साक्षात्कार के पार्ट ने भी बहुत वहाँ पर मदद की। और अंत समय में जब आए, अंत समय माने 17 जनवरी की सुबह हम यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि बाबा ने कुछ इशारा दिया था, तो आसाम से इतने दूर से फ्लाइट से वहाँ यहाँ आ गए अपने लौकिक पिताजी के साथ, और 2 दिन तक बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। और बाबा ने उन 2 दिनों में बहुत अनुभव विशेष कराए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बाबा से तो बहुत बार मिले हुए थे पहले, 8-10 बार पहले अलग अलग स्थानों पर, कानपुर में भी, दिल्ली में भी 2 बार, मधुबन में तो हर वर्ष ही मिलना होता था, लेकिन उन अंतिम 2 दिनों में बाबा की तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी। तो उन 2 दिनों में ये तो एक तरफ अनुभव किया, वो तो सिर्फ सार में एक लाइन में बता देते हैं कि बाबा का कैसे मन जीते जगत जीत का पार्ट देखने को मिला, कि वहाँ उन 2 दिनों में बाबा के पास जब भी हम जाते थे, मिलते थे, तो बस बाबा ऐसे दृष्टि देता था और कहता था, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन में क्या संकल्प उस समय चल रहा है, जो संकल्प लेके हम बाबा के सम्मुख आए हैं, सेवा की बात हो, पुरुषार्थ की बात हो, कोई भी, तो उस रीति से बाबा जो संकल्प प्रश्न चलता था मन में, कोई बात थी वो भी बता देता था और उसका समाधान भी दे देता था। एक बार हुआ, 2 बार, उन 2 दिनों में लगभग 5-6 बार बाबा से मिलना हुआ, और हर बार बाबा ने जैसे ये बात बता दी, और जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, कोई भी संकल्प भक्त के मन में आता है तो बस भगवान तक पहुंचता है, अब भगवान तो बस ये तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इस रीति से 17-18 जनवरी को मिले, तो ये तो मुख्य बात थी कि जितनी बार थे, और अंतिम क्लास में भी हम इसी प्रकार से बैठे हुए थे 18 जनवरी की रात्रि क्लास में, बाबा मुरली चला रहे थे और हम भी सामने बैठे हुए थे, दादी प्रकाशमणि जी भी बैठे हुए थे, तो बाबा ने पूरी मुरली चलाई और मुरली सुनते सुनते ही बस हमारे मन में एक संकल्प जैसे आया कि क्या ही अच्छा हो कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए, कुछ गाइडलाइन बताए कोई भी। तो बस मन में जैसे ही ये संकल्प उठा, और ये संकल्प उठते ही बाबा तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, बिल्कुल मन एकदम क्लियर था बाबा का, तो बाबा तक संकल्प पहुंचा होगा और तुरंत ही जैसे कि साकार में मिलते थे उन 2 दिनों में, बाबा मन की बात जान जाता था, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, इसी तरह उस वक्त भी बस संकल्प ही आया, बाबा तक पहुंचा और बाबा ने जैसे नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए। तो ये तो स्थिति है मन जीते जगत जीत बाबा की, जो देखने को मिली, जो हम सब बच्चों को भी धारण करनी है, और ये तब होगी जब हम इच्छा मात्रम अविद्या होते जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, बस वो ही संकल्प पैदा हो जो संकल्प सिद्ध होने वाला हो। तो इसके लिए तो हम सब बच्चे पुरुषार्थ कर ही रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प ना आए और पूरे संकल्पों के ऊपर जीत हो जाए। लेकिन आज मैं दूसरा पहलू विशेष टच करना चाहता हूं कि प्रकृति जीते जगत जी कैसे है? क्योंकि ये जो खेल है सृष्टि पर, ये है ही खेल पुरुष और प्रकृति का। जब ये पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति अर्थात ये पांच तत्वों से बना शरीर, ये दोनों ही संपूर्ण रीति से पवित्र हो जाते हैं तो वो ही कर्मातीत अवस्था है। और इसीलिए बाबा कहते हैं इन तत्वों को भी रोज योगदान करो, और तत्वों को जितना जितना हम पवित्र बनाते जाएंगे, जैसा कि वरदान बाबा ने दादी जानकी जी को भी दिया, और दादी हमेशा कहा करते थे कि भाई मैं चाहती हूँ कि बस जब मेरा शरीर छूटे तो बस कोई एक पैसा भी खर्च ना हो, कोई भी ना आए। अब व्यवहारिक नॉर्मल रूप में तो ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन ड्रामा अनुसार ऐसा ये कोविड का प्रकोप हुआ और मार्च के महीने में ऐसी स्थिति हो गई कि कोई ऊपर वाले भी सब जैसे नीचे आने में उनको भी बहुत कठिनाई हो। तो देखो संकल्प की सिद्धि का ये है, जो जो दादी के मन में था वो एक तरफ मन जीते जगत जीत और दूसरी तरफ ये प्रकृति कि यहाँ पर संस्कार किया गया लेकिन बस कुछ ब्राह्मण बच्चे ही, जैसे नहीं तो इंस्टीट्यूशनल हेड और पूरे विश्व भर से लोग आते कितनी वो हो जाती। लेकिन दादी बार बार कहती थी कि मेरी इच्छा है कोई भी ना आए, और अगर नॉर्मल परिस्थिति होती तो कितनी भीड़ भाड़ हो जाती सब कुछ। तो ऐसे ही हमें भी इच्छा मृत्यु का वरदान बाबा से संपूर्ण रीति से प्राप्त करना। ब्रह्मा बाबा की भी जैसे ये इच्छा मृत्यु थी, ब्रह्मा बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा बाबा को भी आभास हो गया था, और इसीलिए जितने भी पेंडिंग काम थे, कुछ दो तीन अधूरे काम थे, जैसे पत्रों का लिखना बाकी था, उत्तर देना, वो पूरा कर लिया। एक नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है हमारा, वो बिल्डिंग लेने की थी, काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, वो बाबा ने साइन किया। सब कुछ बचा हुआ काम एक भी पेंडिंग नहीं छोड़ा, क्योंकि अंत में कहा जाता है, अंत में कि जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो अक्सर करके या तो वो व्यक्ति वगैरह याद आते हैं जिनसे अति मोह होता है, बहुत स्नेह होता है प्यार, या जिनसे कुछ जीवन के अंदर कटुता पैदा हो गई होती है, अथवा रहे हुए काम। देखो मैं जा रहा हूँ बस शरीर और ये काम रह गया, ये करना था। बहुत ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जब कई आत्माओं का भोग लगता है बाद में शरीर छोड़ने के, तो बहुत अक्सर करके हमारे भाई बहन हमारे अपने भी के कि बस मैं बहुत समय से सोच रहा था ये करूं, इतना यज्ञ में ये कर दूं मैं जिससे मेरा भाग्य बन जाए, सोचता ही रह गया कल करूंगा कल करूंगा, शरीर छूट गया तो अब तो मैं क्या करूं। पूछते भी हैं बाबा से, बाबा मैं वो छोड़ के आया, बच्चे को दिया है, बच्चा अगर करेगा तो मेरा भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कई बार बताया नहीं, वो तो बच्चा करेगा तो बच्चे का भाग्य बनेगा, आदि आदि। इस प्रकार से कोई भी ऐसा पेंडिंग काम भी न रह जाए जो कि बाद में अंत में हमें खींचता रहे। तो इसके लिए बाबा ने कुछ एक दो बातें जो बताई थी, जो पांच तत्व है ना, ये भारत के अंदर तो ज्यादातर प्राकृतिक प्रकोप से ही मृत्यु होनी है। ये अर्थक्वेक है, ये जो पांच तत्व है, फ्लड है, फैमिन है, अकाल है, सुनामी है, वगैरह वगैरह, इन सब से मृत्यु होनी है। तो इनको हम किस प्रकार से अपना मित्र बना लें जिससे कि अंत समय ये हमें क्लियर इंडिकेशन दे दें, इनके कारण हमारा शरीर न छूटे। अगर अर्थक्वेक हुई, बिल्डिंग गिरी और चारों तरफ विनाश हुआ, उसमें अगर हमारा भी शरीर छूट गया तो कोई विशेषता नई बात नहीं, वो तो अंत मते सो गते होगी नहीं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ होगा और कष्ट होंगे। तो इसीलिए तो बाबा ने ये कहा है कि इन तत्वों को भी अपना मित्र बना लो, जिससे ये तत्व आपको अंत समय में बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन दे दें और आपके पांव उधर ही बढ़े जहां सेफ्टी हो, और तत्व की हलचल के कारण आपका शरीर न छूटे। हलचल तो होगी, बहुत होगी, पांचों तत्व की इकट्ठी हलचल भी होगी, लेकिन उसकी विधि यही है कि ये तत्व जो हैं अंत समय पर, क्योंकि इनसे हमारा तत्वों से हमारा नाता तो सतयुग के आदि से लेकर अंत तक है। भले अलग अलग नाम रूप में शरीर होंगे शुरू से लेकर, लेकिन होंगे तो इन्हीं पांच तत्वों के, और वो पांच तत्व शुरू में सतो प्रधान होते हैं और अब धीरे धीरे अंत में एकदम तमो प्रधान हो गए। तो इस कारण से आवश्यकता इस बात की है कि हम इन तत्वों के साथ अपने संस्कारों को मिलाते चले। ये एडिशनल जो कि दादी ने भी कई बार इंडिकेशन दिया, क्या तत्व, और जानकी दादी के जो और भी क्लोज कॉन्टेक्ट में आए होंगे देखा होगा कि ये जो तत्व है ना, हर तत्व की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे जल तत्व है, बाबा ने बंबई और उन शहरों के लिए बोला हुआ है जल तत्व बहुत उछाल खाएगा समुद्र और वो अपनी सीमाएं तोड़कर उसको अपने में समा लेगा। तो इसके लिए रक्षा के लिए अपना जल तत्व हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए, उसके लिए क्या करना है, जो जल के संस्कार हैं वो संस्कार हमें अपने अंदर धारण करने, जिससे जल तत्व से हमारी मित्रता हो जाए और जल तत्व अंत में हमारे शरीर छोड़ने का कारण न बने। तो जल में कौन सा विशेष गुण होता है, शीतलता का भी होता है, अनेक गुण होते हैं, लेकिन एक विशेष गुण होता है एडजस्टमेंट का। जल जो है जिस बर्तन में लो उसमें समा जाता है, गिलास में लो गिलास में समा जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, यहां तक चम्मच में लो चम्मच में भी समा जाएगा। हर जगह इतनी एडजस्टेबल नेचर होती है। तो ऐसे ही हमारी अपनी नेचर भी इतनी एडजस्टेबल हो कि हम सबके साथ एडजस्ट होके चल सके। ये ना कहें कि भाई इनके साथ तो एडजस्ट होके चलना आसान है, इनके साथ मुश्किल है, नहीं, सबके साथ और जितनी जितनी हमारी नेचर में एडजस्टमेंट का गुण आता जाएगा हर एक के साथ एडजस्ट तभी हो सकेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी नेचर के अंदर होगी। तो उससे क्या होगा, जैसे हम धीरे धीरे जल के साथ अपने संस्कारों को मिलाते जा रहे हैं, तो अंत में अगर मानो जल फ्लड आए, सुनामी आए या जल की कोई भी आपदा आए, वो जल चूंकि हमारा मित्र है और मित्र मित्र के प्राणों की रक्षा करता है, मित्र कभी मित्र के प्राण लेता नहीं है, तो जल जरूर हमारे उस वक्त ये टच होगा उनका, लेकिन हमें वार्तालाप करना जल से आना चाहिए। हर तत्व के साथ वार्तालाप हम करना सीखे। हमें याद है कि जब हम अपना पर्यावरण अभियान निकाल रहे थे तो एक बार केरल में थे, तभी बाबा की ये मुरली विशेष चली थी, 94 की बात है लगभग। तो बाबा ने कहा था कि ये तत्व इनको अभी अभी तक देवता कहते हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता आदि आदि, और आप सब भी होवनहार देवता हो, तो इन तत्वों से वार्तालाप करो, इनसे शेक हैंड करो कि आओ हम और आप मिल करके, हम भी होवनहार देवता, आपको भी देवता कहते हैं, हम मिल करके तत्व पवित्र सृष्टि का निर्माण करें, और वार्तालाप जब करेंगे तब आपकी वाइब्रेशंस, आपकी वृत्ति, वायुमंडल वैसा होगा, वो उन तक पहुंचेगा और वो आपसे शेक हैंड करने आएंगे, हाथ मिलाने आएंगे। तो उस वक्त की बाबा की मुरली बड़ी फोर्सफुल थी, अव्यक्त बाप दादा की। हमारा अभियान वहां था, वहां हमने लोगों ने सुनी और ये निर्णय करा कि चलो कल हम समुद्र के किनारे जाकर योग लगाएंगे और जल तत्व से वार्तालाप करके ऐसे कहेंगे इस तरीके जो जो बाबा ने उसमें बताया हुआ था। तो अगले दिन जो अभियान के लोग थे, पर्यावरण जागृति अभियान के और वहां के सेंटर के लोग, कनानूर जगह थी वो दरी केरल में, तो वहां पर हम सब लोग गए। सुबह 4 बजे से पहले ही पहुंच गए। समुद्र बहुत शांत था, शीतल था, बिल्कुल एक भी लहर नहीं उठ रही थी और उससे बहुत दूर हम लोग जैसे कि रेत पर वहां पर बैठ गए और सब योग करा, टेप था, सब कुछ कि हे जल देवता आओ हम और आप मिलें, शेक हैंड करें, हम लोग नई सृष्टि का निर्माण करें, परमात्मा आया हुआ है। और जैसे वार्तालाप आपस में करते हैं इस तरीके से जैसे जल से वार्तालाप किया, अगर आप तक हमारी वार्ता पहुंच रही है तो आइए हमसे शेक हैंड करें। और बाबा ने कहा था कि वो तो अभी जड़ इस रूप में है और आप चैतन्य हो, होवनहार हो, आपके वो चरण स्पर्श करेंगे। तो हम लोग ऐसे 4 बजे से योग किया, 4:15 हुआ, 4:30, 4:45, 5 बजने में 5 मिनट ही थे तो पता नहीं कहां से एक बहुत बहुत तेज लहर आई पानी की और वो समुद्र का पानी आके जहां हम सब लोग बैठे हुए थे हम सब के वो चरण स्पर्श करके जैसे वो पानी चला गया। ये तो मैंने एक ही घटना सुनाई, जिनसे अफ्रीका से वेदांति बहन ने दूसरी कुछ घटनाएं सुनाई थी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। ऐसे वार्तालाप करेंगे तो हम महसूस करेंगे ये तत्व तो हमारे साथ हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी वार्ता उन तक पहुंच रही है एक एक तत्व से। तो इस तरह जल तत्व में एडजस्टमेंट का गुण होता है। अगर हम एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का संस्कार अपने अंदर धारण करेंगे, हर एक के साथ मिल करके चलें। बस दादी कहा करती थी ना कि क्या बात हारमनी की है, कोई भी अगर कभी थोड़ा बात हो जाए तो चलो अच्छा हारमनी, और हारमनी हो जाती है। तो इस तरीके से एक तो ये होना चाहिए। और दल में, और यहाँ तो समय के अभाव में मैं एक एक गुण ही बताना चाहूंगा। जल में और शीतलता का गुण होता है, कभी मानो क्रोध भी आ जाए तुरंत हम अपनी नेचुरल स्थिति के अंदर आने का प्रयास करें, क्योंकि जल का ओरिजिनल गुण शीतलता है, जल का ओरिजिनल गुण है बहना। और सदा हम भी ज्ञान में सदा आगे बढ़ते चले। जब भी जल रुक जाता है तो वहाँ बदबू हो जाती है या मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो अपने ज्ञान मार्ग के जीवन में भी हम सदा आगे बढ़ते रहें, कहीं रुके नहीं। ये जो जल के और जितने भी गुण हैं, पारदर्शी होता है जल, ऐसे हम भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा ना हो कोई कहे देखो ये अंदर से एक है बाहर से दूसरे हैं, बिल्कुल हरेक ये कहे, जैसे कहते हैं महान आत्माओं के लिए गांधी जी का जीवन भी जैसे एक खुली किताब था, तो ऐसे हमारा जीवन भी एक खुली किताब की तरह हो, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो कि बस सबको जैसे कि अंदर बाहर एक नजर है। तो ये तो जल है। तो अगर हमने ये जल के कुछ गुण धारण कर लिए तो अंत में चाहे जितना बाढ़ आए, फ्लड आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, जल कभी हमारी मृत्यु का या कष्ट का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने जल के साथ मित्रता कर ली और वो बंधा हुआ है। मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है, वो बंधा हुआ है हमें टच करने का। हाँ, ये हमारा काम है कि दूसरे मन जीते जगत जीते, उसके तहत हम क्लीन और क्लियर बुद्धि बनाएं। वहां से ट्रांसमिशन तो होगा कि इधर की तरफ चलो, ऑटोमेटिकली पैर उधर बढ़ जाएंगे, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां सेफ्टी होगी। और इस तरीके से बस प्राकृतिक तत्व के हलचल के कारण मृत्यु नहीं होगी, बल्कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी छोड़ा, मैंने देखा, वो बाद में बताता हूँ। इसी तरह जल में, पृथ्वी में, क्योंकि काफी हलचल पृथ्वी की हलचल के कारण होगी, जिसमें अनेक अनेक मृत्यु होंगी। और पृथ्वी अभी भी थोड़ा बहुत जब अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, कितने बिल्डिंग गिर जाते हैं सब। तो पृथ्वी में कौन सा मुख्य गुण होता है? कौन सा मुख्य गुण है? सहनशीलता। हाँ, ये भी मुख्य गुण है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी दाता है। दाता है, पृथ्वी से हमें सब चीज मिलती है, चाहे जमीन से फल फूल सब्जी गेहूं चावल अनाज हर चीज, तेल वगैरह जो पेट्रोल वगैरह सब पृथ्वी से मिलते हैं। एक दाना बो दो अनेक गुना करके पृथ्वी देती है, दाता है। ऐसे ही हमारा स्वरूप भी दाता का हो, जो भी हमारे सम्मुख आए वो खाली हाथ न जाए। बस कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, लेकिन उसे स्नेह है, सहयोग है, प्रेम है, उसके प्रति शुभ भावना है, शुभ, इसमें तो कुछ खर्चा होता नहीं। वो हमसे ये महसूस करके जाए कि हाँ, जितना ये मुझे प्यार करते हैं, स्नेह दे रहे हैं, उतना कोई नहीं करता, जितना हमें बाबा से महसूस होता था। जब भी कोई मिलता था, बाबा एकदम हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, और हम खिंच के बस चुंबक की तरह जैसे बाबा की बाहों में चले जाते थे, और जाते ही एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी। फिर थोड़ी देर तक वो आनंद अनुभव करते थे, फिर बाबा ऐसे थपथपा के, हाँ बच्चे आओ आओ बच्चे, ऐसे, क्योंकि एक को जाना होता था, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, पार्टी वाले सब मिलते थे। तो वो लेकिन कैसे विदेही हो जाते थे, क्योंकि बाबा ने विदेहीपन का इतना अभ्यास किया होता। हम सब जानते हैं लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ये आत्मा है, वो सबका लिख के, तो बाबा जिसको भी दृष्टि देता था वो आत्मिक रूप में, भले टेम्परेरी थोड़े समय के लिए, लेकिन स्थित हो जाता था और वैसा ही वो अनुभव करता था। तो ये है दातापन, ये अनुभव कराना, ये बहुत बड़ी, बाबा कहता है बहुत दुनिया ने सुन लिया, बहुतों का सुना है, लेकिन अब वो अनुभव करना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे सम्मुख भी जो आए ना, तो पृथ्वी की जितनी भी हलचल होंगी, अगर हमने दातापन का गुण धारण किया होगा, सहनशीलता का गुण धारण किया होगा, एक का अनेक गुना करके, हाँ, लोगों को देने का, बस हम लोग तो भरपूर, जब तक हम खुद भरपूर नहीं होंगे तो हम दान दूसरे को क्या करेंगे। तो इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा से यही तो सबको, हम सबको महसूसता आती थी, बाबा जितना हमें प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। क्यों? भरा हुआ था, भरपूर था बाबा। तो ऐसे ही हरेक को ये महसूसता आए, ये दाता है, कोई भी आए वो दातापन की हमसे अनुभूति करके जाए, और ये पॉजिटिविटी पूरी की पूरी धारण करके जाए, तो जितनी भी हलचल होगी अंत समय में, अर्थक्वेक और ये सब, तो वो सब कोई भी हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। और उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है, अभी भी अर्थक्वेक होती है तो विज्ञान को एक सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन बहुत ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु हैं जिनकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, और उनको तुरंत पता चल जाता है, दो चार पांच मिनट पहले वो अपने बिल्लों से निकल आते हैं। हम लोगों को अर्थक्वेक में विषय जब ये पढ़ाया गया था इंजीनियरिंग में, तो ये बताया गया था, और अभी भी इस बात को माना जाता है, वो तुरंत ही कोई खूंटा तोड़ के भागेंगे और सेफ साइट की तरफ भागते हैं। और ये क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ इज इन मोर हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ उनका तादम्य बहुत काफी निकट का है। प्रकृति के अंदर कुछ भी चेंज होने वाला होता है वो तुरंत उनको महसूस होता है, और वो तुरंत उसके अनुरूप अपने को ढालते हैं। इसी प्रकार से हमारी भी सिक्स सेंस बहुत बहुत पावरफुल होती जाएगी जितना जितना, इसीलिए बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि। और साथ ही साथ दूसरी दो बातें भी कि टचिंग पावर और कैचिंग पावर। बाबा तो टच कराना चाहता है, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई बात हो, कोई बंधा हुआ है, बाबा कहता है बस प्रेम से याद करो, मेरे साथी, मेरे बाबा, आओ आओ बाबा, मुझे मदद करो, और तुरंत ही बाबा मदद के लिए बंधा है। हम लोगों ने बहुत कई बार, अनेकों बार अनुभव किया है, लेकिन टचिंग पावर बाबा तो कर रहा है, लेकिन हमारी अगर कैचिंग पावर में ही कहीं खोट है, हमारा रिसीवर सेट ही अगर ट्यून्ड नहीं है तो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है क्लीन और क्लियर बुद्धि और कैचिंग पावर, ये बहुत आवश्यक है अंत समय में जब बाबा टचिंग कराएगा। क्योंकि बाबा कहता है मैं बंधा हूं बच्चों की रक्षा के लिए, और अगर बच्चे ऐसे प्राकृतिक आपदा के कारण शरीर छोड़ दें तो अंतमति सो गति तो होगी नहीं, फ्लड में बह गए या इधर सुनामी हुआ, इधर अर्थक्वेक हुआ, इतनी आपदाएं हैं तो चारों तरफ इतना भयंकर नजारा होगा कि उसमें बाबा की याद कहां बैठेगी। लेकिन उससे हम एकदम डिटैच होके तुरंत ही कुछ मिनट पहले ही हमारे कदम सेफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे जो बाबा ने कहा बंधा हुआ है। तो ये धरती का हम गुण धारण कर लें और धरती की तरह सहनशीलता का भी गुण धारण कर लें और दूसरा भी जो धरती के गुण हैं तो अचल अडोल तो बढ़ जाएंगे। तीसरी है ऐसे बाबा ने कहा वायु है बानो तत्व, क्योंकि ये शरीर इन तत्वों का, तो वायु में कौन सा विशेष गुण होता है, वायु हल्की होती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, दोनों में बिल्कुल विरोधाभास है लेकिन दोनों साथ साथ रहते, विरोधी गुण होते हुए भी साथ साथ। ऐसे ही हम परिवार में चार सदस्य हैं, विरोधी गुण होंगे, कोई ज्ञान में चलता होगा कोई नहीं चलता होगा, लेकिन उनके साथ भी जब ये इतने तत्व ऐसे महान विरोधाभास होते हुए भी रह सकते हैं तो क्या हम और आप आपस में मिलके अपने परिवार के साथ, संबंधियों के साथ, ऑफिस में, बिजनेस में, सबके साथ संस्कार मिलाते हुए चले। और हल्का उसके अंदर यही होता है, वायु के अंदर बस, वायु का अपना कुछ नहीं होता, जहां बहती है दुर्गंध से जाएगी दुर्गंध ले लेगी, या सुगंध से जाएगी सुगंध ले लेगी। ऐसे ही हम इतने वो हों, कोई मन के अंदर किसी के प्रति भी ऐसा न हो, भाई भतीजावाद की बात, कि किसी को बहुत लाइक करें किसी को बहुत डिसलाइक करें, ऐसी बात नहीं। बाबा ने कहा है सबके प्रति हमारा समान भाव, और जब सबके प्रति समान भाव अगर होगा तो वो समान भाव होने के कारण क्या होगा, वायु निर्लिप्त, इसीलिए इसे प्राण वायु कहा जाता है। और कुछ हो ना हो लेकिन अगर ये प्राण वायु नहीं होगी तो हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, ये प्राण वायु है निर्लिप्त भाव। क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो अच्छे गुण वाला होगा ठीक है उसके गुण है वो भी भगवान की देन है, और जिस पे खराब अवगुण है वो भी बेचारा निकालने की चेष्टा कर रहा है। तो किसी के प्रति वो भाव न हो, कोई बहुत अति प्रेम का भाव, कोई घृणा का भाव, कोई नहीं, तो जब ये होगा तो वायु की तरह हल्के होंगे तो अंत समय में जितने साइक्लोन आएंगे, चाहे बहुत तेज हवाएं चले, बहुत मृत्यु का कारण बनेंगी, लेकिन हम लोग सब सेफ्टी से। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ये कैचिंग पावर क्लीन होगी तो बिल्कुल आगे हो जाएंगे। तो ये तत्वों के कारण हमारी मृत्यु ना हो, इच्छा मृत्यु हो। ऐसे ही आकाश, क्या गुण है आकाश का, विशालता, महानता, इतना चारों तरफ, तो आकाश की तरह हमारा हृदय विशाल हो, जैसा हमने ब्रह्मा बाबा में देखा, दादियों में देखा, सबके साथ रह के इतना क्षमा भाव, बड़े से बड़ा भी कोई वो क्राइम करके आता है हमारे अंदर क्षमा भाव उसके लिए, और जब क्षमा भाव अगर होता है ना तो क्या उसकी कोई बात दिल में नहीं रहती, तो हमारे भी व्यर्थ संकल्प कोई नहीं चलेंगे, और वो स्वतः ही हल्का होकर हमें अपनी बात बता देगा, न कि हमें कोई पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इनका दिल बहुत विशाल है और ये कोई बात, मेरी कोई बात फैलाएंगे नहीं, उसका अनड्यू एडवांटेज कोई ले ले ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए एक ये आकाश की तरह विशालता जितनी होगी, तो आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदा होंगी, चाहे मिसाइल हो, रॉकेट हो, एटम बम हो, ऊपर से आने वाली जो विनाश के लिए निमित्त बनेंगी, वो हमारे विनाश के लिए कोई भी कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने, तत्व को अपना मित्र बना लिया, वो समय पर बस उधर ही पैर। और ऐसे बहुत उदाहरण है, अभी तो समय के अभाव में नहीं, लेकिन कि बहने हमारी बताती है जब ये आने वाला था तो बस उससे एक दो मिनट पहले ही मैं वहां से उधर चली गई और वो चीज ऐसे गिर गई और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, आदि आदि कई जगह के। यहाँ तो पूरे विश्व भर के समाचार आते हैं मधुबन में। और इसी तरह पांचवा अंतिम तत्व है जैसे अग्नि, और अग्नि का प्रतीक है सूर्य। तो सूर्य होता है ना, तो या तो अति गर्मी के कारण भी बहुत मृत्यु होनी है, और दुनिया वाले भी वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि जितने ग्लेशियर वगैरह है वो भी मेल्ट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, आदि आदि। लेकिन अगर हमने सूर्य का विशेष गुण क्या है, गर्मी का, अग्नि का गुण है कि उसमें कोई भी चीज डाल दो तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही बाबा चाहता है अंत में आप बच्चों की ऐसी अवस्था हो, ज्वालामुखी स्टेज हो, कि कोई भी आत्मा आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए और वो चली जाए। रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख आए, लेकिन रोना जैसे कि भूल करके हंसती हुई वो चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति की अनुभूति में लहराती हुई चली जाए, उसका रूप परिवर्तन हो जाए, जैसे अग्नि रूप परिवर्तन करती है। और वो तभी होगा जब आपका ज्वालामुखी स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। तो इसीलिए अभी आवश्यकता यही है कि इन पांचों तत्वों को, और इनका स्वरूप हमने बाबा में देखा 18 जनवरी की रात्रि क्लास में। बाबा ने क्लास कराई और क्लास के बाद बस बाबा उठे, और बाबा उठ करके दरवाजे तक गए। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, पहली बार बाबा के मुंह से ये शब्द निकले। और उस दिन बाबा को एक बार भी ना कोई खांसी आई, ना कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर आत्मा का जो योग बल है ना, वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से बाबा बिल्कुल, वो 18 जनवरी की रात्रि क्लास की आप मुरली सुनो, एक बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं तो बाबा को इस एज में कई बार खांसी भी आती थी, प्रॉब्लम होती थी। फिर बाबा तो कमरे में गए, और कमरे में जाके कैसे दादी जी के हाथों में हाथ, नयन मुलाकात करते हुए बाबा ने शरीर छोड़ा। लेकिन विशेषता ये रही कि वो शरीर बाबा ने 18 जनवरी की रात को छोड़ा, 18 की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, और बस लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं और हमेशा की तरह उठकर बोलेंगे हाथ फैला के कि आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे आओ। तो एक तो शरीर बिल्कुल काला नहीं पड़ा, पूरा गोरा, दूसरा शरीर के अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, नहीं तो डेड बॉडी में दुर्गंध आने लगती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, कुछ भी नहीं। और हमें मालूम है हम तो यहीं थे, और न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था। ये है प्रकृति जीत आत्मा के लक्षण, और ये प्रकृति जीत आत्मा तभी बनी बाबा जब बाबा ये पुरुषार्थ करके इन पांचों तत्वों को भी जैसे बाबा ने अपने अंदर जैसे इस समान बना लिया था। तो अभी आवश्यकता यही है कि जनवरी का मौका है, और हर जनवरी मास में हम सब लोग बाबा को विशेष याद करते हैं। तो इस बार यही संकल्प लेकर के हम लोग जाएं कि मैं मन जीते जगत जीत के साथ साथ प्रकृति जीते जगत जीत भी बनूंगी, और इन पांच तत्वों से को रोज कम से कम भी कुछ मिनट अवश्य इनसे वार्तालाप करूंगी, योगदान करेंगे, जिससे कि ये तत्व अंत समय मुझे सहायक बने और मैं भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ूं, न कि किसी तत्व के प्रभाव में आके मेरी भी इच्छा मृत्यु हो। ये संकल्प अगर होगा तो बाबा जरूर हम बच्चों को भी बाबा की, ब्रह्मा बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराएगा। ओम शांति, ओम शांति।